आचार्य रचित धोला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये जो 15वीं पुस्तक, उसमें शेष 18 अनुयोग द्वारों की चर्चा चलती है, उसमें से प्रक्रम अनुयोग द्वार जो है 8 नंबर का, उसकी अभी हम बात करेंगे। उसी का मंगलाचरण किया अभी हमने, नहीं कल शुरू हुआ था अपना, और अभी हम पृष्ठ संख्या 21 पर आ गए, 21। प्रक्रम का अर्थ होता है कर्म के प्रचय, इकट्ठा होना। निबंधन में हमने द्रव्य किसमें संबंध रखता है, संबद्ध होता है, उसकी बात की थी, और प्रक्रम में कर्म प्रचय की बात आती है। ये 16 पृष्ठ पर उसकी परिभाषा लिखी है, ऊपर के पैराग्राफ में अंतिम लाइन में 16 नंबर पर, कि कार्मण पुद्गल प्रचय को प्रक्रम कहा गया है, ये बात वहां बताई थी। शंकाकार ने वहां से शंका शुरू की थी, उसका कहना है जो कर्म है वही 8 प्रकृतियों रूप परिणमता है, अकर्म से इन्हें एक कर्म है उसके 8 बातें बनती है, तो फिर उस पर वह पोह बहुत चला था। उसका कहना है जो कार्य होता है वो सत होता है, वही कार्य होता है, जो है नहीं उसका कार्य बन नहीं सकता, यानी कारण जैसा है वैसा का वैसा कार्य होता है, यानी वो सर्वथा नित्य ही मानता है कार्य को भी, तो उसको कार्य ही नहीं कह सकते। ये भी बात कल हमने बहुत न्याय के द्वारा बताई थी। अब यहाँ आगे और भी चर्चा चलेगी। ये मानने वाला था कार्य सर्वथा सत है, वो पहला मानने वाला था सांख्य मति वाला, और दूसरे मान रहे कार्य सर्वथा असत है, जैसे बौद्ध है, कुणाद है वगैरह, इन्होंने गौतम कहा था उसको, कुणाद ऋषि, गौतम ऋषि ने वो वैशेषिक और अन्य न्याय दर्शन वगैरह के करता है, तो उनका सर्वथा असत मान रहे थे, उसके लिए उसका भी निषेध कर रहे हैं कि सर्वथा असत जो है उसका उत्पाद नहीं हो सकता है। जैनियों ने जैसे अनेकांत स्वरूप बताया है कि द्रव्य किसी अपेक्षा से वहाँ ध्रुवता भी चलती है और उसी में अवस्थांतर होता है, यानी सर्वथा असत नहीं है वस्तु और सर्वथा सत भी नहीं है। सर्वथा सत मानने से पर्याय ही सिद्ध नहीं होती है और सर्वथा असत मानने से द्रव्य की सिद्धि नहीं होती है, वो वस्तु पर्याय रूप ही क्षणिक हर समय पलटती रहती है, असत का ही उत्पाद असत का ही उत्पाद होता रहता है। अभी हम ये 5 नंबर की गाथा पढ़कर उसका अर्थ करेंगे। यत् असत् सर्वथा कार्यम् तन्मा जनिख पुष्पवत् मोपादान नियामो भून् माश्वास कार्य जन्मनि। यदि कार्य सर्वथा, सर्वथा का निषेध हो रहा है, क्या कहते हैं ब्रैकेट में लिखा है, पर्याय के समान द्रव्य से भी असत है तो वह आकाश कुसुम के समान, द्रव्य से भी के बाद वहां स्पेस भी है, यानी कार्य सर्वथा असत है तो ऐसा लिखा नहीं ना, क्या कहते हैं, देखो यदि कार्य सर्वथा असत है तो, यानी पर्याय के समान द्रव्य से भी असत कहो उसको, द्रव्य की भी सत्ता नहीं है और वह कार्य उत्पन्न हुआ बिना द्रव्य के, तो क्या होगा उसको? अभी यहाँ ख पुष्प, ख यानी आकाश, और उसका पुष्प आकाश के पुष्प समान, आकाश पुष्प नाम का कोई पुष्प नहीं होता है, आकाश की कोई पुष्प नहीं होता, तो आकाश कुसुम का भी अर्थ पुष्प होता है, आकाश कुसुम के समान उत्पन्न ही नहीं हो सकता, आकाश कुसुम की उत्पत्ति नहीं है, वैसे सर्वथा असत कार्य की भी उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि द्रव्य को ही असत मान लिया है। इसके अतिरिक्त वैसी अवस्था में, यानी ऐसा मानने पर घट का उपादान मिट्टी है, तंतु नहीं है, इस प्रकार का उपादान नियम भी नहीं बन सकता। क्या कहते हैं, द्रव्य को ही असत माना है, उपादान ही नहीं कहा है, तो किसी से उत्पत्ति नहीं होती, यानी उपादान है ही नहीं है, ऐसा मानने का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए अमुक कार्य अमुक कारण से उत्पन्न होता है, तमुक से नहीं, तही हुआ है। इस प्रकार का कोई भी आश्वासन कार्य की उत्पत्ति में नहीं हो सकता। हम कहते ना इस कारण से ये कार्य उत्पन्न होता, उपादान से कार्य उत्पन्न होता है, इस द्रव्य की ये पर्याय है, ऐसा जब हम कहते हैं, परंतु इसे कुछ माना ही नहीं, द्रव्य को ही असत माना है, तो विशिष्ट द्रव्य की ये पर्याय है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। कहीं से भी कोई भी पर्याय ही माना है, द्रव्य माना ही नहीं है उस जीव ने। ये सब न्याय की ही चर्चा है, आगे भी और भी, यानी अन्य भी हेतु दे रहे हैं। नित्य कारण कलाप से तो असत कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि सर्वथा नित्य वस्तु अनाधेय अतिशय होने से न प्रमाण की विषय हो सकती है और न वचन की भी विषय हो सकती है। यानी क्या कहते, पहले वाले ने माना था वस्तु सर्वथा नित्य है, और दूसरा मान रहा है सर्वथा असत है। पहले ने माना सर्वथा सत का अर्थ ही सर्वथा नित्य, तो जो नित्य कारण कलाप, नित्य ही कारण माना, तो जो है ही है, तो कार्य तो है ही, उसने कहा, तो फिर असत कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। जो नहीं था वो उत्पन्न हुआ, तभी तो हम उसको कार्य कहते हैं, परंतु इसने सर्वथा सत ही मान लिया है, क्योंकि सर्वथा नित्य वस्तु अनाधेय, आधेय के विरुद्ध अनाधेय, आधार आधेय, हाँ, तो अनाधेय अतिशय होने से न प्रमाण की विषय हो सकती है और न वचन की भी विषय हो सकती है। ऐसी कोई वस्तु ही एग्जिस्टिंग नहीं है, प्रमाण यानी प्रमाण ज्ञान का जो विषय है, प्रमाण का विषय नहीं हो सकती। प्रमाण का विषय क्या है? द्रव्य और पर्याय मिलकर प्रमाण का विषय होता है, और वो प्रमाण का विषय नहीं हो सकती और नहीं उसको कहा जा सकता है। इस प्रकार असत होने से गधे के सिंह के समान उसके कारणता का विरोध है। जैसे गधे के सिंह नहीं होते, वैसे उसमें भी कारणता का विरोध हो जाता है, वह वस्तु कारण नहीं हो सकती। इतने पर भी यदि उसे कारण स्वीकार किया जाता है, तो यह भी प्रश्न उपस्थित होता है कि विवक्षित कारण क्या क्रम से कार्य को करता है या अक्रम से? तो कहते क्रम से तो वह कार्य को कर नहीं सकता, क्योंकि नित्य में क्रम की संभावना ही नहीं है। जो है तो उसमें क्रम कैसा होगा? जैसे हम कहते हैं गुण है, अनादि से है, तो गुणों में कोई क्रम नहीं होता। क्रम से तो वह कार्य को कर नहीं सकता, क्योंकि नित्य में क्रम की संभावना ही नहीं है, और यदि उसमें क्रम की संभावना है तो फिर वह अनित्यता को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होने पर नित्यता का विरोध है। उसने सर्वथा नित्य मान लिया है, तो उसमें यदि वो क्रम स्वीकार करता है, तो ये जाहिर है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था हुई तो उसके नित्यता का भंग हो गया, नित्यता रही नहीं। अभी नीचे से चौथी लाइन, अभी अक्रम से वह कार्य करता है यह द्वितीय पक्ष भी योग्य नहीं। कोई मानेगा नहीं नहीं वो अक्रम से कार्य करता है, क्योंकि ऐसा मानने पर एक समय में समस्त कार्य को उत्पन्न करके द्वितीय समय में उसके असत्व का प्रसंग आता है। इन्हें क्रम नहीं है, न्याय न्याय ये तो पूरा न्याय ही न्याय ही इसमें से। अभी मैंने जितने पेजेस आगे पढ़े सब न्याय की भाषा है। यानी यदि वो कहता है अक्रम से सभी कार्य उत्पन्न होते हैं, तो जैसे गुण एक साथ सभी है विद्यमान, अभी ये कार्य कह रहा है तो एक साथ सभी हुए तो दूसरे समय में कुछ कार्य नहीं रहा तो उसका असत हो जाएगा, वो कार्य असत हो जाएगा। इस प्रकार से कार्य व्यापार से रहित कारण अस्तित्व को प्राप्त नहीं होता, यानी कार्य से रहित ऐसा कारण का अस्तित्व नहीं पाया जाता। कारण है तो उसका कार्य भी वहां अवश्यमेव होगा। इस प्रकार से कार्य व्यापार से रहित कारण अस्तित्व को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि प्रमाण का अविषय होने से, यानी अनुमान आदि जो प्रमाण है, ये तर्क अनुमान आदि भी प्रमाण कहे जाते हैं, यानी वो अनुमान का भी विषय नहीं हो सकता। तो अनुमान आदि प्रमाण का अविषय होने से उसके अस्तित्व का विरोध है, अनुमान से भी उसको रूल आउट कर सकते हैं, ऐसे हम यहां बता सकते हैं। पहले तो नित्य कारण की बात बताई, अभी अनित्य कारण से असत कार्य उत्पन्न होता है यह बौद्धाभिमत भी ठीक नहीं है। बौद्धों का मत अभिमत, बुद्ध वो तो सर्वथा क्षणिक ही मानते हैं, नित्य वस्तु ही नहीं मानते हैं, तो अनित्य कारण है और कार्य भी असत है ऐसा मानते हैं। वो क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि स्थिति रहित वस्तु के कारणता का विरोध है। स्थिति यानी एक समय से अधिक टिकना, उसकी स्थिति कहलाएगी। वो वस्तु ही नहीं टिकती है तो उसको कारण कैसे कह सकेंगे? यदि स्थिति से रहित अर्थ भी कारण हो सकता है तो वह क्या उत्पन्न होता हुआ कार्य को उत्पन्न करता है, उत्पन्न होकर कार्य को उत्पन्न करता है, नष्ट होकर कार्य को उत्पन्न करता है, अथवा विनष्ट होता हुआ कार्य को उत्पन्न करता है? यानी उसके स्थिति नहीं है, दो समय भी नहीं, एक समय का ही अगर कारण मानेंगे तो कारण एक समय के लिए है, तो कारण भी उत्पन्न होता हुआ कार्य को कर रहा है क्या, कि कारण का नाश होने पर कार्य हो रहा है? ये चार ऑप्शन दिए ना, क्या क्या कहा? तो क्या उत्पन्न होता हुआ कार्य को उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि कार्य भी एक समय का, कारण भी एक समय का माना, तो कारण भी उत्पन्न हो रहा है और वो कार्य को उत्पन्न कर रहा है, ऐसा मानना पड़ेगा। दूसरी बात क्या, उत्पन्न होने के बाद कार्य को उत्पन्न करता है ऐसा मानते हैं क्या? तीसरी बात, नष्ट होकर उत्पन्न करता है अथवा नष्ट होते हुए कार्य को करता है? अब इसकी छानबीन करेंगे, हर एक ऑप्शन लेके वो हो सकता है कि नहीं उसकी चर्चा करेंगे। उत्पन्न होता हुआ तो वह कार्य को उत्पन्न कर नहीं सकता, क्योंकि इस प्रकार से एक समय में ही समस्त कार्यों के उत्पन्न होने का प्रसंग आता है। कारण कहाँ है और एक समय में ही उसको कार्य करना है, तो उसके जितने भी कार्य वो एक ही समय में उत्पन्न होने चाहिए, परंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वैसा होने पर द्वितीय समय में समस्त कार्यों की अनुपलब्धि का प्रसंग प्राप्त होता है। वो कारण एक समय का था और एक ही समय में उसने सभी कार्य उत्पन्न कर दिए, तो दूसरे समय में कोई कार्य ही नहीं रहा, ये मानना पड़ेगा। अब दूसरा जो उसने पॉइंट बताया था, उत्पन्न होकर वह कार्य को उत्पन्न करता है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अवस्थान रहित उसका दो समयों में रहने का विरोध है। उत्पन्न होने के बाद कार्य को उत्पन्न करता है ऐसा मानेंगे तो दो समय तो रुकना पड़ेगा, एक समय में उत्पन्न हुआ कारण और दूसरे समय में उसने कार्य किया, परंतु उसी के कहने के अनुसार दो समय तक तो रहता नहीं है, क्योंकि उसने तो क्षणिक ही मान लिया है सर्वथा। अब तीसरी बात, नष्ट होकर के वह कार्य को उत्पन्न करता है, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि नष्ट होने पर अभाव स्वरूप को प्राप्त हुए, नष्ट होने को वह क्या हुआ, अभाव हो गया उसका, अभी वो अभाव स्वरूप ही हो गया, तो उसके समस्त शक्तियों से रहित होने के कारण कार्य को उत्पन्न करने का विरोध है। जो स्वयं नष्ट हो चुका है वह कार्य को कैसे उत्पन्न करेगा? और यदि इस विरोध को नहीं माना जाता है तो फिर, यानी नष्ट हुआ है, कोई है ही नहीं और कार्य को उत्पन्न कर रहा है, ऐसा मानेंगे तो खरगोश के सिंग से भी चंद्रमा उत्पन्न हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं, खरगोश के तो सिंग नहीं होते, वो होते ही नहीं, और फिर उससे चंद्रमा उत्पन्न हुआ, क्योंकि अभाव की अपेक्षा उनमें कोई विशेषता नहीं। खरगोश के सिंह का भी अभाव है और उस अभाव में से वो चंद्रमा उत्पन्न होने की बात कर रहे हैं। यानी ये जो अन्य अन्य मत स्थापित करते उसमें कितने फ्लॉज है, कितने उसमें तो यानी गलतियां भ्रांतियां है। लोगों को लगता है ना हम सर्वधर्म समभाव, ये बौद्ध है, वो है, वो ये सब अपने अपने धर्म के हैं, पर उनके तत्वों में कितनी गलतियां हैं ये ख्याल में नहीं लेते लोग। अब और एक रहा था ना, विनष्ट होता हुआ वह कार्य को उत्पन्न करता है, यह पक्ष भी असंगत है, क्योंकि विनष्ट और अविनष्ट पदार्थों को छोड़कर तीसरा कोई विनश्यमान पदार्थ पाया नहीं जाता। विनष्ट होता हुआ तो या तो वो विनष्ट होगा या अविनष्ट होगा, विनष्ट होता हुआ ऐसा कोई तीसरा पदार्थ नहीं होगा। हाँ, इस कारण सत कार्य के समान असत कार्य भी उत्पन्न नहीं हो सकता। यानी सर्वथा सत माना था कार्य को एक ने, सांख्यमति वालों ने, तो कहते वो भी नहीं उत्पन्न हो सकता, और सर्वथा जो असत है वो भी नहीं उत्पन्न हो सकता। यदि कहा जाए कि उभय स्वरूप कार्य उत्पन्न होता है, यानी सत असत स्वरूप कार्य उत्पन्न होता है, ऐसा कहो, सो यह भी संभव नहीं है। सत से भी उत्पन्न होता है और असत से भी उत्पन्न होता है, ऐसा मानो, यह अनेकांत का, जैनियों के अनेकांत का भी ऐसा ही गला घोट देते हैं, यह अनेकांत का स्वरूप नहीं समझ में आता है, अनेकांत तो किसी अपेक्षा वस्तु ऐसी और किसी अपेक्षा वैसी ऐसे कहते हैं, तो वस्तु ऐसी भी और वैसी भी है एट ए टाइम, ऐसा, हाँ, अपेक्षा रहित वस्तु ऐसी है ऐसा कहते हैं। तो यहाँ वही कहते हैं कि उभय स्वरूप कार्य उत्पन्न होता है, सो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि उसमें विरोध आता है, अथवा उभय पक्ष में दिए गए दोषों का प्रसंग अनिवार्य होगा। जो उभय मानने वाला है, जैसे हमने उभयाभासी में देखा था ना, अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चल रहा है अपना विषय, निश्चयाभासी की मान्यता बताई, व्यवहाराभासी की बताई, तो उभयाभासी तो ठीक होगा ना, दोनों का श्रद्धान करने, तो दोनों संबंध में भ्रांति है। तो ये जो सत संबंध में यहाँ सत से कार्य होता है, में सर्वथा सत से होता है मानने वाले की जो भ्रांति है, सर्वथा असत से मानने वाली भ्रांति है, तो दोनों से होने वाले की भी वही भ्रांति चल रही है। अनुभव करो, उसको अनुभव हुआ है, ऊपर क्या है, नानुभय पक्खोवी, अनुभय अनुभय यानी दोनों ही नहीं, न सत न असत, अनुभय पक्ष भी नहीं बनता, क्योंकि वैसी अवस्था में निस्वरूप होने से उसकी उत्पत्ति का विरोध है। उसको कोई स्वरूप ही नहीं, निस्वरूप हो गया वो, न सत है न असत है। यदि कार्य का ही अभाव स्वीकार किया जाए तो यह भी अनुचित होगा। क्या कहते हैं, अब इतनी उलझन में क्यों पड़ते हो, कार्य होता ही नहीं है, उसका अभाव ही है, ऐसा मानो ना तो सब झंझट खलास हो जाएगा, ऐसा कोई कहता है, तो कहते यह भी अनुचित है, क्योंकि जो प्रत्यक्षादि से उपलब्ध्यमान है उसका अभाव मानने में विरोध है। हम तो प्रत्यक्ष देखते हैं, लौकिक में व्यवहार में भी देखते कि कार्य उत्पन्न होता है, पहले नहीं था और अभी उत्पन्न हुआ है, ये उत्पत्ति देखी जाती है, तो कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष से जो उपलब्ध्यमान है, जो दिखाई देता है, जो हमारे अनुभव में आता है, उसको अनुभव उसका अगर हम अभाव मानेंगे तो ये विरोध को प्राप्त होगा। इस कारण अभी ये कंक्लूजन यहाँ पर ये जैनियों का अनेकांत यहाँ वस्तु को सिद्ध करता है। कैसे? कथनचित सत कथनचित असत, कॉमा देना यहाँ पर। वस्तु कैसी है या कार्य भी कैसा है, कार्य की उत्पत्ति में ये बात हो रही ना ये कार्य कैसा उत्पन्न होता है तो कहते हैं कथनचित सत, यानी कथनचित सत कार्य उत्पन्न होता है, यानी किसी अपेक्षा। कथनचित का अर्थ थोड़ा है ऐसा नहीं लेना, कथनचित या किंचित अर्थ में नहीं है वो, कथनचित यानी स्यात् किसी अपेक्षा से। कथनचित असत कथनचित अवक्तव्य, अब दोनों एक साथ, कथनचित सत्व असत, कथनचित सत्व अवक्तव्य, कथनचित असत्व अवक्तव्य, तथा कथनचित सत्व असत और अवक्तव्य कार्य उत्पन्न होता है ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसी से सारे उलझने और भ्रम मिटने वाला है। इसको क्या कहते हैं अश्विन भाई, आपको पता है? ये कितनी बातें बताई यहाँ पर, सात बातें बताई ना, इसको क्या कहते हैं? सप्तभंगी। सप्तभंगी पहले आपने सुना है नाम सप्तभंगी? हमने तो बहुत बार किया अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति। हाँ, साथ नहीं भी देखे थे और वो गुणों में भी लिखा था। क्या कहते? हाँ नहीं, पर वे थे कि नहीं पता नहीं, जब अपना विषय हुआ था आप नहीं होगे शायद। हाँ, बहुत सारे समय ज्ञान चंद्रिका में भी ये आई बात। हाँ, तो ऐसा निश्चय करना चाहिए क्योंकि इसके बिना यानी ऐसे अनेकांत बिना एकांत पक्षों में दिए गए पूर्वोक्त दोषों का प्रसंग कैसा है? अनिवार्य है, जो टाला नहीं जा सकता, जिसका निवारण नहीं हो सकता, ऐसा अनिवार्य है। इसके बिना यानी अनेकांत, ऐसे अनेकांत के बिना एकांत वालों ने जो ऐसे दिए थे पूर्व पक्ष, वो सभी उसके दोष वहां हो गए। अब इन भंगों का अर्थ कहते हैं। भंग तो बता दिए उन्होंने सात अलग अलग, उसका अर्थ अब कहते हैं। वह इस प्रकार है, कार्य कथनचित सत उत्पन्न होता है, क्योंकि वो कॉमा ऊपर चला गया, क्योंकि पुद्गल स्वरूप से और मृत्तिका आदि व्यंजन पर्याय रूप से भी सत द्रव्य की घट पर्याय स्वरूप से उत्पत्ति देखी जाती है। क्या कहना चाहते हैं? वो तो सर्वथा असत कार्य नहीं उत्पन्न हुआ है, तो पुद्गल वहां विद्यमान था तो घट भी पुद्गल में रहा कि नहीं रहा? पुद्गल तो पुद्गल रहा, तो वहां कथनचित सत है कि नहीं? वहां सत की उत्पत्ति हुई, वैसे भी पुद्गल तो है ही है। फिर अभी मृत्तिका की बात करेंगे, मिट्टी। कभी कभी दृष्टांत में हम मिट्टी को ही द्रव्य के देख ऐसा समझा कर भी समझाते, यहां मिट्टी को अलग लिया। तो मिट्टी को क्या कहा उन्होंने? व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं? हाँ, लंबे काल तक एक समय की पर्याय होती है उसको कहते हैं अर्थ पर्याय, और बहुत दीर्घ काल तक या चिरस्थाई जो पर्याय होती है उसको कहते हैं व्यंजन पर्याय। लंबे काल तक वो पुद्गल है, वो मिट्टी रूप से रहेगा, बाद में उसमें भी परिणमन होकर अन्य रूप से बन जाएगी, परंतु अभी तो वो मिट्टी रूप से है। तो जब पुद्गल भी और मृत्तिका भी मिट्टी भी घट में दोनों है कि नहीं है, कार्य हुआ घट, तो वो पुद्गल भी है वहां, मिट्टी का भी वहां, मिट्टी भी है, मिट्टी रूप व्यंजन पर्याय वहां चल रही है, मिट्टी का ही घट है ना, तो दोनों का ही अस्तित्व पाया जाता है, तो हम कहेंगे सत की उत्पत्ति हुई अपेक्षाकृत, परंतु वो घट रूप से नहीं विद्यमान था। घट है अवस्था जो है वो घट उसमें नहीं विद्यमान थी, मिट्टी भले थी परंतु वो घट रूप नहीं थी, पुद्गल रूप थी, मिट्टी रूप थी, फिर भी वो मिट्टी और पुद्गल रूप यहां भी कायम रहा, तो हम कहेंगे कथनचित सत था वो। जो था वही उत्पन्न हुआ, ऐसा कहेंगे। उसमें अवस्था पलट गई। अब कहेंगे कथनचित असत उत्पन्न होता है। देखो, सत किस अपेक्षा से था? कार्य घट रूप से था के अंदर, हाँ मिट्टी रूप से था, पुद्गल रूप से था। हाँ, अब उसमें से अभी ये घट की उत्पत्ति हुई, यानी कुछ था कि नहीं। पहले क्या मानता था? कार्य ही सत स्वरूप है, सर्वथा सत है, घट है ही और वो घट हुआ, घट का तिरोभाव हुआ था पर घट प्रकट हुआ, ऐसा उसका मानना था, पहली मान्यता थी। परंतु ये अपेक्षाकृत सत है, सर्वथा सत नहीं है, वो घट घट रूप से नहीं था। घट नाम की जो पर्याय वो अभी उत्पन्न हुई है, पहले वो मिट्टी थी, मिट्टी रही, पुद्गल था, पुद्गल रहा, तो वो उस अपेक्षा से वो घट में जो उसकी कंटिन्यूटी चालू रही है, वो द्रव्य वहां रहा ना कायम, इसलिए उसको सत कहा। सर्वथा असत से भी नहीं उत्पन्न होते और सर्वथा सत से, कथनचित कैसे घटित होता है, उसको कौन सी अपेक्षा से वो सत है, अपेक्षा समझे बिना वो घट ही वहां विद्यमान था कह रहा है, घट से ही घट की उत्पत्ति हुई मानता है। तो घट से क्या घट की उत्पत्ति हुई, फिर कारण कौन और कार्य क्या, कार्य कह ही नहीं सकते उसको। अभी कथनचित असत की बात है, ये उत्पन्न करना उन्मन्न हुआ है, तो करना न का कथनचित वह असत उत्पन्न होता है, जो कार्य हुआ है, अभी घड़ा बना तो हम उसको असत भी कह सकते हैं, किसी अपेक्षा से वो था नहीं और बना, क्योंकि पिंड रूप आकार से नष्ट हुए पुद्गल द्रव्य की, पुद्गल द्रव्य है और उसका पिंड रूप आकार था, अभी उसकी उत्पत्ति किस रूप से हो गई, घट स्वरूप से उत्पत्ति देखी जाती है, जो नहीं था, जो आकार नहीं था वो उत्पन्न हुआ, पुद्गल नहीं था और उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं कहा, पुद्गल था ही नहीं और घट उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं कहा। वो सर्वथा असत मानने वाला तो ऐसा ही मानता था, कुछ था ही नहीं और वो कार्य उत्पन्न हुआ है, यानी बिना द्रव्य के वो हुआ है ऐसा मानता था। ये दो बातों की बात हो गई। अब कहते कथनचित अवक्तव्य कार्य उत्पन्न होता है। अवक्तव्य का अर्थ होता है क्या, शब्द का अर्थ क्या हुआ, अवक्तव्य, जो कह नहीं सकते। क्या नहीं कह सकते, क्योंकि अर्थ पर्यायों की अपेक्षा वचन के अविषयभूत पुद्गल द्रव्य की घट स्वरूप से उत्पत्ति देखी जाती है, अथवा अपने स्वरूप को न छोड़कर परस्पर में अनुगत होने से जात्यंतर भाव को प्राप्त हुए विधि प्रतिषेध धर्मों को कहने वाले शब्द का अभाव है, इसलिए भी कार्य अवक्तव्य उत्पन्न होता है। क्या कहना चाहते हैं, किस अपेक्षा से अवक्तव्य है, तो हम कहते हैं ना अर्थ पर्याय, एक समय की पर्याय वो ज्ञान का या वचन का अविषयभूत होता है। दूसरी बात क्या है, अपने स्वरूप को न छोड़ो, ये यहां दो धर्मों की बात की है, एक विधि और एक प्रतिषेध। विधि एंड टू एस्टेब्लिश, वो अस्ति, और प्रतिषेध है ना उसका डिनाय करना, उसका उसको नास्ति कहेंगे, अस्ति और नास्ति। हम किसी बात को वो विधि करना है ने उसके अस्तित्व सिद्ध करना, और प्रतिषेध करना है ने उसका अभाव सिद्ध करना, हम कहते हैं ना उसका निषेध किया, वो विधि और प्रतिषेध। ऐसे जो धर्म है वो कैसे हैं, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते और परस्पर में अनुगत है, इसलिए जात्यंतर भाव को प्राप्त हुए हैं। जात्यंतर भाव ने अन्य जाति का भाव, अस्ति ये अन्य जाति का भाव है और नास्ति ये अन्य जाति का भाव है, परस्पर विरुद्ध लगते हैं। तो जो परस्पर धर्मों को क्या हम एक साथ कह सकते हैं, क्या आप अस्ति और नास्ति दोनों एक साथ बताओ, बोलो कैसे बताओगे। हाँ, वो तो आप क्रम से बता रहे हो, क्रम से मत बताओ, एक साथ बताओ। मेरे दो बेटी है, रीना एक मौनायक है, दोनों का आप एक साथ नाम लेके पुकारो उनको, नहीं हो सकता। हाँ, इसी को वक्तव्य कहते हैं। हम क्रम से तो कह सकते हैं, सर्वथा अवक्तव्य की बात नहीं है, अपेक्षाकृत अवक्तव्य, अवक्तव्य भी अपेक्षाकृत है। सर्वथा अवक्तव्य कोई मान लेवे तो क्या दोष हुआ, वचन ही नहीं सिद्ध होगा ना। उसके बारे में यह अवक्तव्य है ऐसा कहना भी उसके अवक्तव्यता के विरुद्ध हो गया, क्योंकि उसने इतना तो बताया कि वस्तु अवक्तव्य है, तो कह नहीं सकते तो इतना भी कैसे बताया, है ना, ये न्याय की भाषा है। हाँ, देखो क्या कहते हैं, देखो कहने वाले शब्द का, इसलिए भी कार्य अवक्तव्य उत्पन्न होता है। शंका, जात्यंतरता क्यों है, ये अन्य जाति के क्यों कहा, ये जो धर्म है ना, जो ऐसे परस्पर विरुद्ध भाषित होने वाले धर्मों के युगल बहुत सारे पाए जाते, अस्ति नास्ति एक अनेक तत तत, कितने सारे धर्म हैं, नित्य अनित्य सत असत, तो ये जो है यहाँ विधि और प्रतिषेध का, तो ये जात्यंतर क्यों है, अन्य जाति के क्यों है। समाधान, कारण कि वे विधि प्रतिषेध धर्म संयोग और समवाय के बिना परस्पर में अनुगत है। संयोग के बिना इन्हें, ऐसी कोई चीजें होती है जो संयोग से एक दूसरे के साथ मिली हुई हो, और कोई ऐसी होती है कि वो समवाय यानी नहीं थी एक साथ, फिर आके वो जुड़ गई है, एक रूप हो गई है, उसको हम समवाय कहेंगे। पर अभी एक द्रव्य है और उसके गुण हैं, तो वो गुण उसके संयोग में है क्या, द्रव्य के पहले नहीं थे और बाद में संयोग में आकर मिले, अब वो तो उसका तो तादात्म्य स्वरूप है उसका, है ना। और समवाय ने वो कोई ऐसे मानने वाले हैं कि जो ज्ञान है ना उसको वो विज्ञान कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, वो समवाय से जीव के साथ है, यानी आत्मा है अलग और ज्ञान है वो उसके साथ आकर जुड़ा है, तो वहाँ भी ऐसी चर्चा चलती है। खंबा भी है वो ज्ञान रहित है, तो ज्ञान उसके साथ भी समवाय प्राप्त होगा तो वो भी जानने लगेगा खंबा, क्या ऐसा हो सकता है, तो गुणों का समवाय संबंध नहीं होता है, नित्य तादात में संबंध होता है, वो अनादि से है। तो यहाँ कहते हैं विधि और प्रतिषेध ये जो दो धर्म है परस्पर अनुगत है, वो एक साथ है ही, उनका स्वरूप भिन्न भिन्न है, परंतु एक साथ अलग, यहाँ से एक अस्ति आया दूसरा नास्ति आया, ऐसे नहीं है, एक ही वस्तु में पाए जाने वाले दो धर्म है ये। अनुगत यानी वो तो उस बस एक साथ है, वो पाए जाते साथ में, एक ही द्रव्य में एक साथ पाए जाते हैं, उसको अनुगत कहा। देखो क्या कहते हैं समाधान में, क्या बताएं, कारण कि वे विधि प्रतिषेध धर्म संयोग और समवाय के बिना परस्पर में अनुगत है, यानी बाद में आकर उसमें परस्पर ये जुड़े हुए ने, अभी हम कहते ना उसका एक दूसरे के साथ अविनाभाव संबंध है, ऐसा हम कहते ना, दो गुणों का कौन सा संबंध है, अविनाभाव, यहाँ धर्म कहा है उसको, क्योंकि गुण कहने से उसकी पर्याय हम एक समय की पर्याय कहते हैं, परंतु ये धर्म होते हैं, धर्मों की कोई पर्याय नहीं होती है, वस्तु में नित्य धर्म भी है अनित्य धर्म भी है, और वो दोनों धर्म सर्वदा साथ रहते हैं, तो उसको अपेक्षीकृत हम उसका वर्णन कर सकते हैं। देखो फिर शंकाकार पूछता है, यहाँ दो शब्द है ना, संयोग और समवाय, तो संयोग किसे कहते हैं, उसका समाधान, पृथक प्रसिद्ध पदार्थों में मेल के मेल को संयोग कहते हैं, उनका मेल होना आपस में मिल जाना उसको संयोग कहते हैं। पृथक प्रसिद्ध पदार्थ, जैसे मैं एक पदार्थ हूँ और पैसा एक दूसरा पदार्थ है, हमारे संयोग में आए ना, एक घर हमारे संयोग में आए, या दो हम दो हमारे दो संयोग हुआ कहीं से आके मिले, तो ये मिलने को संयोग कहते हैं, वो पृथक ही रहते हैं, भिन्न भिन्न रहते हैं, उनकी सत्ता अलग अलग है और एक साथ में रहते, बस उसको संयोग कहने में आता है। फिर शंका समवाय किसे कहते हैं, तो कहते हैं अयुत सिद्ध पदार्थों का एक रूप से मिलने का नाम समवाय है। अयुत सिद्ध है ने जो मिले नहीं, ऐसे भिन्न भिन्न पदार्थों का क्या करना, एक रूप से मिल जाना, इसको समवाय कहते हैं, एकमेक हो जाना। परंतु पहले कैसे थे, अयुत सिद्ध थे, भिन्न भिन्न थे, और फिर अभी एक मिल गए, एक में वो समवाय हो गया उनका। नहीं, वो एक रूप हो जाते हैं, और पृथक प्रसिद्ध पदार्थ वो पृथक ही रहते हैं। धन का संयोग हुआ तो क्या हमारे से एकमेक नहीं हुआ, वो धन अपने से भिन्न रहा ना। ये घर हमारा कहेंगे, ये संयोग में हमारे बच्चे हमारे संयोग में, वो तो अपने से भिन्न पदार्थ है, उनका संयोग कहने में आएगा। और समवाय जैसे अन्य जीव अन्य मति मानते हैं, ज्ञान अलग था, जीव अलग था, और समवाय होकर दोनों मिल गए। अभी ये क्यों नहीं है संयोग और समवाय, उसको सिद्ध करेंगे। विधि और प्रतिषेध धर्मों का संयोग तो संभव नहीं है, क्योंकि उनमें पृथक सिद्धत्व का अभाव है, ये दो भिन्न वस्तुएं नहीं है। पृथकता क्या, प्रदेश भिन्नता को पृथक कहते हैं। वो दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के प्रदेश, उनकी सत्ता भिन्न भिन्न रहती है, ऐसी उनके भिन्नता नहीं है। अब कहते समवाय की भी संभावना नहीं है, समवाय भी नहीं हो सकता, क्योंकि सामान्य स्वरूप से सब काल में परस्पर अजहत वृत्ति से स्थित उक्त दोनों धर्मों का संबंध नहीं बन सकता। क्या कहते हैं, सभी कालों में हमेशा ही दोनों ही धर्मों की उपस्थिति है, वहां पर अस्ति नास्ति दोनों धर्म वस्तु में है, क्या बाद में आकर मिले हुए, बाद में आकर एक रूप हो जाते तो उसको कहने में आता कि इनका समवाय हुआ, तो वो है ही परस्पर में अजहत वृत्ति से है। देखो देखो, यहाँ सत और असत पर सिद्ध कर रहे हैं। सत यानी विधि, विधि यानी टू एस्टैब्लिश, और असत यानी उसको रिजेक्ट करना है, हाँ, तो उसको प्रतिषेध कहे। तो ये दो अलग अलग धर्म वस्तु में है। कार्य पर अभी घटित कर रहे हैं, अपना विषय कार्य संबंधी चल रहा है, तो कार्य को तो एक ने सर्वथा सत माना था और एक ने सर्वथा असत माना था। अब यहाँ जैनाचार्य कहते हैं कार्य कथनचित सत है, किसी अपेक्षा से वो सत है, वही उत्पन्न हुआ। कौन सी अपेक्षा बताई, वो पुद्गल भी था और मूर्तिका नाम की वो व्यंजन पर्याय भी थी, तो वही अभी कार्य हुआ, घट रूपी कार्य हुआ, तो पुद्गल का पुद्गल रूप वहाँ कायम रहा और मिट्टी रूप कायम रहा। फिर भी असत क्यों कहेंगे कथनचित असत, क्योंकि पहले पिंड वाला आकार था और अभी घट वाला आकार हो गया, तो असत भी उत्पन्न हुआ ऐसा कहेंगे। सर्वथा असत मानने वाला क्या मान रहा था, द्रव्य है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, और बस कार्य उत्पन्न हुआ, कुछ नहीं में से कार्य उत्पन्न हुआ, यानी वह ना पुद्गल है ना मिट्टी है, बस घट की उत्पत्ति हुई, वो सर्वथा असत मान रहा था। अब आचार्यों ने कहा ये वस्तु कथनचित असत है, क्यों, पहले मिट्टी का पिंड रूप अवस्था थी और अभी घट रूप अवस्था, अवस्था घट रूप नहीं थी, अवस्था जो नहीं थी वो उत्पन्न हुई, इसलिए असत असत की उत्पत्ति हुई ऐसा कहें, उसमें अपेक्षा लगी। असत की उत्पत्ति में पुद्गल नहीं था, मिट्टी नहीं थी, उत्पत्ति हुई ऐसा नहीं है, बराबर है। असत है आकार अलग था, अभी भिन्न आकार बना, ये असत हुआ। तो सत और असत ये दो कथनचित धर्म सिद्ध किए। तीसरा कौन सा धर्म बताया, ये कथनचित पर लगाया, तीसरा भंग कौन सा लगाया,
तो कार्य तो कैसा शक्ति रूप से तो पर्याय में था,
अब यहाँ तीसरा जो कथन चाहिए भंग, तीसरा भंग अवक्तव्य का है, विधि और प्रतिषेध ऐसे जो धर्म हुए सब में लगा है सप्तभंगी में। अब यहाँ सत और असत ऐसे दो है, सत है वो विधि रूप है और असत है वो निषेध प्रतिषेध रूप है, बराबर। क्या हम उनको एक साथ कह सकते हैं, क्या क्रम से कहेंगे? क्रम से कह सकते, एक साथ एट ए टाइम नहीं कह सकते, इसलिए उसको अवक्तव्य कहा। एट ए टाइम हो तो सकते हैं, कह नहीं सकते, इसलिए उसको अवक्तव्य कहा। अब उस पर यहाँ चर्चा चल रही है। अवक्तव्य पहले पेज पर आ गया है, देखो 23 पेज पर सप्तभंगी बताई उन्होंने। हाँ, ऊपर के पैराग्राफ में अंतिम चार लाइन कि सर्वथा सत मानने वालों के उन्होंने सभी भ्रांतियां कैसी कैसी होती है वो भी बता दी, सर्वथा असत मानने वाले की भी भ्रांतियां बताई, दोनों को मानने वाले उभय मत वाले भी उसकी भी भ्रांति बताई, और अनुभय होता ही नहीं मानने वाले की भी भ्रांति बताई। अब सच्चा क्या है, तो आचार्यों ने सात भंग सप्तभंगी बताई, तो वहां क्या लिखा है, ये जो कार्य होता है, कार्य उत्पन्न होता है ना, वो कैसा है, तो कथनचित सत है वो उत्पन्न होता है, कथनचित असत है वो उत्पन्न होता है, और फिर कहेंगे जो अवक्तव्य है, किस अपेक्षा अवक्तव्य है, तो एक साथ कह नहीं सकते इसलिए अवक्तव्य है। सत है क्या असत है ये एक साथ नहीं कह सकते, कार्य कह सकते हैं, वो सत उत्पन्न हुआ है कि असत उत्पन्न हुआ है, तो आप क्रम से कह सकते कि पुद्गल है मिट्टी है वो सत ही है, और वो उस अपेक्षा से सत है, और जो नहीं था पिंड का आकार था और अभी घट का आकार हुआ वो असत था, वो उत्पन्न हुआ, तो अपेक्षा बतानी पड़ेगी और क्रम से कहना पड़ेगा, ये अवक्तव्य हुआ। तो कथनचित सत व असत, सत व असत, कथनचित अवक्तव्य के बाद क्या कहा, कथनचित सत व असत, यानी वो क्रम पड़ा, पहले सत बताया बाद में असत बताया, फिर कथनचित सत व अवक्तव्य, सत तो बताया परंतु एक साथ नहीं बता सकते, वो कथनचित सत व अवक्तव्य हुआ, कथनचित असत व अवक्तव्य ने असत पहले बताया, दोनों एक साथ नहीं बता सकते, वो असत अवक्तव्य हुआ, और कथनचित सत व असत व अवक्तव्य, क्रम से बताना है तो सत कहेंगे फिर असत कहेंगे, एक साथ नहीं कह सकते इसलिए अवक्तव्य कहा। ऐसे सात भंग किसी वस्तु में किसी भी चीज में लगते हैं।
लास्ट का कैसे बना, कथनचित सत, कथनचित असत्य, अवक्तव्य?
हाँ, कथनचित सत पहले हमने सत क्रम से, जैसे हम अस्थि नास्ति पर घटाते, स्व की अपेक्षा अस्थि, पर की अपेक्षा नास्ति, और युगपत स्वपर की अपेक्षा अवक्तव्य, ये युगपत नहीं कह सकते इतना ही अवक्तव्य है। ये सप्तभंगी किसी भी धर्म पर लगाते हैं, तो उसके बारे में चर्चा चल रही है। ये विधि और प्रतिषेध ये जो धर्म है वो वस्तु में एक साथ है, ऐसा नहीं है कि वो भिन्न भिन्न धर्म अलग अलग पड़े थे और उनका संयोग हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि उनके अलग अलग थे और अभी आकर ये एक रूप हो गए, तो वस्तु में वो अंगभूत है, उसके धर्म होते हैं वो वस्तु में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं, हाँ देखो, स्यात यानी कथनचित किसी अपेक्षा कृत, और वाद यानी कथन, अपेक्षाओं से कथन करना उसको स्यादवाद कहते हैं, वही जैनियों की बहुत बड़ी शैली है। वस्तु का सही स्वव्यवस्था करने वाला वो कथन है, नहीं तो ये मिथ्या मान्यता वाले सर्वथा सत, सर्वथा असत, सर्वथा अस्थि, सर्वथा नास्ति, ऐसी मान्यता उनकी हो जाती है। कोई द्रव्य को ही मानते हैं, कोई पर्याय को ही मानते हैं, कोई उसका स्वरूप बिगाड़ कर मान लेते हैं, तो ये सब वस्तु व्यवस्था संबंधी जो कुछ मिथ्या भ्रांति है वो ये स्यात वचन के द्वारा दूर होती है, इसको स्यादवाद कहा। वो स्यादवाद कथन किसका कथन करते, तो अनेकांत का कथन, अनेकांत यानी वस्तु के अनेक धर्म, और उसको कथन करने वाला है वो स्यादवाद, अनेकांत और स्यादवाद ऐसे दो शब्द आते हैं ना, तो अनेकांत का अर्थ ऐसा नहीं होता कि वो ये भी सच्चा वो भी सच्चा, दो झूठे को सच नहीं कह लिया, ये उभय मान्यता थी ना सत और असत मानने वालों को। हम क्या कहते, जैनी है ना वो बहुत विशाल हृदय के हैं, क्योंकि बौद्ध क्षणिक मानते हैं और वेदांती तो नित्य को मानते हैं, तो हमने दोनों का समन्वय कर दिया। कैसे? वह नित्य भी और अनित्य भी, यानी दो झूठ मिलकर एक सच हुआ, ऐसा है क्या? नहीं है। हाँ, तो किसी अपेक्षा नित्य है, किसी अपेक्षा अनित्य है, अपेक्षाकृत है।
देखो आपको एक कथा सुनाता हूँ मैं। कुछ अंधे थे, जा रहे थे, तो वहाँ एक हाथी उनके हाथ में आया। तो प्रत्येक जन अपने अपने हाथी को हाथ लगाता है और कहता है, अरे हाथी, उसके हाथ में पूंछ आती है, तो कहते हैं हाथी तो क्या बोलते हैं, दोरी जैसा है। दूसरा
कहता है हाथी ही दोरी जैसा है।
दूसरा कहता है नहीं नहीं, पीठ को हाथ लगाता है ये तो दीवार जैसा है। कोई पैर को हाथ लगाता है, वो कहता है कि वो खंभे जैसा है, हाथी खंभा है, ऐसा खंभा है। तो फिर चौथा बोलता है कि उसके कान हाथ में आते हैं, तो सूप, समझते आप, सुपड़ा, सुपड़ा है। तो अभी ये सारा एक एक मिलकर हाथी हुआ है क्या? इसने कहा कि हाथी सूप जैसा है, इसलिए हाथी सूप जैसा लग रहा है उसको, लेकिन सुपड़ा, आप जो कहते हैं सुपड़ा जैसा है, ऐसा वो समझ रहा है, लेकिन सुपड़ा ऐसा उसने पूरा हाथी को सुपड़ा माना था, पर वो कथनचित यानी सुपड़े की अपेक्षा उसके कान ऐसे है, कान की अपेक्षा से वो ऐसा है, ऐसा हर एक में लगाना। तो हम अपेक्षा यानी जो प्रत्येक द्रव्य है वो सात अंगों से युक्त है, जिसको हम सप्त भंग कहते हैं, ख्याल में? और उसमें से
कथन
हम
कथन में ये सात भंग होते हैं।
हाँ,
कथन में
द्रव्य को
एट ए टाइम
द्रव्य को एस्टेब्लिश करने के लिए ये कथन आता है। हाँ, समझने के लिए। तो यहाँ कार्य के ऊपर जो हम घटित कर रहे हैं, तो कार्य कथनचित सत है, कार्य कथनचित असत है, और कार्य कथनचित अवक्तव्य है। अब ये तीन तो मूल भेद है एक एक, तो हमने तो ऐसे ही याद किया है, कार्य कथनचित सत है, कार्य कथनचित असत है, कार्य कथनचित सत असत है, और कार्य कथनचित अवक्तव्य है। अभी इसमें से जेपी साहब, आपका जो आखिरी जो पॉइंट है ना, तो इसमें से ये चौथा पॉइंट तो हमने देख लिया, अवक्तव्य। अभी आगे कहते हैं कार्य कथनचित अस्ति अवक्तव्य है, यानी हम अस्ति कह सक रहे हैं, लेकिन उसी समय नास्ति नामक जो घर धर्म है वो हम नहीं बता पा रहे, इसलिए अवक्तव्य है। वैसे नास्तिक की भी बात ले लेना, कार्य कथनचित नास्ति और अवक्तव्य। अभी कथनचित अस्ति नास्ति अवक्तव्य जो कह रहे हैं, तो कथनचित यानी एक क्रम से जब हम कहेंगे तो उसको हम अस्ति से भी कथन कर सकते हैं, क्रम से नास्ति का भी कथन कर सकते हैं, लेकिन दोनों का युगपद कथन नहीं कर पाते, इसलिए वो अस्ति नास्ति अवक्तव्य है। तो ये, हाँ जी, ये सातवां भेद है। हाँ, तो कथनचित अवक्तव्य है, यानी हम
एट अ टाइम युगपत नहीं कह सकते उसको अवक्तव्य। सातवां भेद में पहले क्रम से बता दिया, अस्ति है, फिर नास्ति है, परंतु एट अ टाइम नहीं बता सकते।
यानी ये जो कोई भी वस्तु को हम प्रूव करना चाहेंगे तो ये सात भंग तो लगेंगे उसमें, ये पूरा वस्तु का हमें स्वरूप ख्याल में आएगा। अभी जैसा उसने कहा कि हाथी तो खंभे जैसा, खंभा ही है, हाथी खंभा है, तो अभी इनका क्या कहना है कि ये सात जनों ने झूठी झूठी मान्यता रखी, ये सात मिलकर हाथी हुआ है क्या? हाथी तो हाथी जैसा ही है, इसलिए हम इसका थोड़ा मत, उसका थोड़ा मत, इसका थोड़ा मत, ऐसे हरेक के मत लेके हमारा जैन दर्शन बना नहीं है, ये मूल बात है। लोग ऐसा ही मानते हैं कि इन्होंने इनको भी खुश रखा, उनको भी खुश रखा, इनको भी खुश रखा और अपना मत चलाया, ऐसा नहीं है, ये इनका बताना था।
जैसे हम द्रव्यान योग में पढ़ते हैं ना कि समय दर्शन ज्ञान चारित्र से ये मोक्ष मार्ग है, और उपचार से हमने अन्य किसी को कह दिया तो उसको व्यवहार कह दिया, व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो जो एकांतवादी है या जो अनेकांत नहीं समझता, अनेकांत कैसा है, सच्चा अनेकांत क्या है, जो निश्चय मोक्ष मार्ग है वही मोक्ष मार्ग है, परंतु व्यवहार मोक्ष मार्ग वो कहने के लिए वो सच्चा नहीं है, बराबर ना। उससे मोक्ष वो व्यवहार करने से या वो जिसको हमने व्यवहार कहा है उससे मोक्ष होने वाला नहीं है, क्योंकि वो शुभ भाव को कह दिया है, यानी एक है और एक नहीं है, बराबर। अभी जो गलत उसमें से अनेकांत का अर्थ निकालता है वो क्या कहते हैं, निश्चय से भी होता है और व्यवहार से भी होता है, दोनों से होता है मानने वाला, और उसको वो अनेकांत समझता है। इसीलिए तो ये तो क्रिया किए भी ना होगा क्या, ऐसा उसका सवाल होता है उल्टा, ये भी करना ही चाहिए, इसके बिना नहीं होता, इसी से होता है ऐसा भी मानता है, इससे भी होता है उससे भी होता है दोनों से होता है ऐसा मानता है। मान्यता में तो सही मान्यता होनी चाहिए, वो राग भाव हो गए, त्याग होगा, संयम होगा, मुनि दीक्षा होगी, सब कुछ होगा, परंतु मान्यता में सही क्या होगा, ये जो निश्चय मोक्ष मार्ग है उसी से मोक्ष होगा, ये व्यवहार जिसको कह दिया उससे नहीं होगा, वो आता है रास्ते में परंतु उससे मोक्ष प्रकट नहीं होगा, इसको अनेकांत कहते हैं। ये अनेकांत का गलत अर्थ लोग करते हैं, बहुत सारे लोग गलत अर्थ करते हैं, इससे भी होगा उससे भी होगा इसको अनेकांत समझते हैं। यानी शब्द सुनते हैं ना अनेकांत, और उसका सही उनको अर्थ नहीं मालूम होता, और जैन तो विशाल हृदय वाले अनेकांत है, देखो उन्होंने सबको अपने में समा लिया, ऐसा कहते न्याय की भाषा नहीं, अरे न्याय के वो साधारण, ये इसमें तो कुछ न्याय शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये समाधान की दूसरी लाइन फिर पढ़ते हैं। देखो विधि और प्रतिषेध धर्मों का संयोग तो संभव नहीं है, क्योंकि उनमें पृथक सिद्धत्व का अभाव है। फिर कहते समवाय की भी संभावना नहीं है, क्योंकि सामान्य स्वरूप से सब काल में परस्पर अजहत वृत्ति से स्थित, परस्पर में एक साथ है ना, वो अजहत वृत्ति ने एक साथ स्थित उक्त दोनों धर्मों का संबंध नहीं बन सकता। संबंध तो तभी कहेंगे जो था नहीं और बना, पति पत्नी संबंध कब से है, शादी हुई तब हुआ संबंध, उसके पहले तो वो पत्नी अपने मायके माँ के घर में रहती थी और पति अलग रहता था, उसको पति पत्नी भी नहीं कह सकते थे हम, तो भाई बहन का संबंध ये तो अलग थे और बाद में एक साथ आ गए। और कोई कहेगा सर्वथा मानो ऐसा ही, तो कहते एकांततः इन दो प्रकार के संबंधों का अभाव हो ऐसा भी नहीं है, एकांत से वैसा भी नहीं मानो कहते, हाँ, क्योंकि अनेकांत भी सर्वथा अनेकांत नहीं है, अनेकांत तो है, कोई कहेगा वो वस्तु सर्वथा अनेकांत स्वरूप है, नहीं, तो उसमें भी सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत ऐसे दोनों हो गए, उसमें सम्यक शब्द लगेगा उसके पीछे,
वो
अलग, वो समवाय ने इकट्ठा एक रूप हो जाना उसको समवाय कहते हैं, पांच समवाय वो ग्रुप को समवाय कहते हैं, वहां समवाय एक्चुअली सम का मिलकर एक साथ आना उसको समवाय कहा है, पांच कारणों का मिलना इकट्ठा उसको समवाय कहा था। हम तो पांच में से एक समवाय ये वो एक समवाय दो ऐसा कहते हैं, क्योंकि उसको भी वो नाम रूढ़ी हो गई कि स्वभाव नाम का एक समवाय है, निमित्त नाम का एक समवाय, तो हमने पांच कहा समवाय, वहां पर पांचों का इकट्ठा आना यह एक समवाय हो गया है, फिर भी वो रूढ़िगत अभी सबको मिलकर पांच समवाय ऐसा कहने में आता है, पांचों का मिलकर एक समवाय हुआ है, पांचों का मिलकर समवाय हो गया है, समुदाय हुआ है, तो उसके हरेक को समवाय कहना ये तो अभी उपचार से उस पर रूढ़िगत नाम पड़ गया कि ये पांच समवाय है करके। अयुत यानी जो अयुत सिद्ध पदार्थों का जो भिन्न भिन्न थे अयुत सिद्ध थे, युत यानी जुड़े हुए नहीं थे, उनका एक साथ एक रूप हो जाना उसको समवाय कहते हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं देखो, फिर एकांत से कोई ऐसा माने तो ऐसा भी नहीं है, यानी किसी अपेक्षा वहां भी अपेक्षाकृत समवाय और संबंध बताएंगे, क्या कहते हैं एकांतता इन दो प्रकार के संबंधों का अभाव हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि विधि प्रतिषेध विशेष की अपेक्षा, पहले सामान्य स्वरूप के बताया था विधि, वो विशेष की अपेक्षा वे दोनों संबंध पाए जाते हैं। विशेषता है ना, दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है, इसलिए वहां कहेंगे विधि व प्रतिषेध धर्मों के भिन्नता नहीं हो यह भी बात नहीं है, यानी उनमें भिन्नता होती ही नहीं ऐसा कोई कहते तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भिन्न प्रत्यय द्वारा ग्राह्य होने से, क्योंकि एक विधि का विधि धर्म हम कैसे सत शब्द से हम ग्राह्य करते हैं उसको, या किसी अपेक्षा अलग अपेक्षा लगाते हैं, प्रतिषेध के लिए अलग अपेक्षा लगाते हैं, तो अलग अलग प्रत्ययों से अलग अलग शब्दों से उसको हम ग्रहण करते हैं, तथा पृथकभूत द्रव्यों में रहने से उनमें भिन्नता पाई जाती है। ये हम कहेंगे अस्ति स्व की अपेक्षा अस्ति, पर की अपेक्षा नास्ति, इस तरह से उसको ले सकते हैं, इसलिए उसमें कथनचित भिन्नता भी है, इसलिए उनमें जात्यंतरत्व सिद्ध है, उनकी जाति अलग अलग है, इतना जात्यंतर का अर्थ होता है। अब कहते हैं
कौन सी जाति अलग है,
ये विधि वाली और उसके निषेध प्रतिषेध वाली, ये दो जाति अलग है ना, उसका स्वरूप भिन्न है, उसको अलग अलग शब्दों से सूचित किया जाता है, इसलिए उसको जात्यंतर कहा। इसीलिए विरोध विरुद्ध प्रतिभाषित होने वाले धर्म कहते हैं नित्य और अनित्य, अस्ति और नास्ति, एक और अनेक, तत् अनेक, अतत्, जो कुछ है इसे सत असत, तो ये उसकी जात्यंतर कहा, तो उसके पीछे क्या कारण है उसकी चर्चा हुई। अब कहते हैं नैगम नय की अपेक्षा कथनचित सत व असत कार्य उत्पन्न होता है। हमने पहले क्या देखा, कथनचित सत कार्य उत्पन्न होता है, पुद्गल और मिट्टी तो वही की वही, इसलिए वो कथनचित सत का। कथनचित असत उत्पन्न होता है, पहले पिंड था और अभी घट हुआ, तो आकार की अपेक्षा वो असत था वो उत्पन्न हुआ। कथनचित अवक्तव्य ने एक साथ हम दोनों को नहीं कह सकते, इसलिए अवक्तव्य हुआ। अब कहते नैगम नय की अपेक्षा कथनचित सत व असत कार्य उत्पन्न होता है। कथनचित सत्व असत, नैगम नय क्या करता है, न एकम वो नैगम, दोनों को एट अ टाइम वो विषय करता है, तो ये शंका समाधान में पता चलेगा। देखो नैगम नय किसे कहते हैं, जो विद्यमान है वह भेद व अभेद इन दोनों का उल्लंघन करके नहीं रहता। क्या कहता है, जो वस्तु है वो भेदा भेदात्मक होती है, भेद स्वरूप और अभेद स्वरूप, उसका उल्लंघन करके नहीं होता है ना, उसमें वो भेद और अभेद दोनों पाए जाते हैं। जो विद्यमान है, इसका अर्थ क्या है, जो है जो सत है वो भेदा भेदात्मक होता है, इस कारण जो उन दोनों में से किसी एक को विषय न करके विवक्षा भेद से दोनों को ही विषय करता है वह नैगम नय कहा जाता है। विवक्षा भेद ने कथन भेद से कथन की अपेक्षा दोनों को ही विषय करता है उसको नैगम नय कहते हैं। एक का विषय, हाँ बताने में क्रम है, नैगम नय जानने में तो क्रम नहीं है, तो उसने क्या किया, दोनों को ही विषय बनाया, सत को भी और असत को भी। देखो अवक्तव्य के साथ विधि धर्म की प्रधानता से, क्या कहते हैं, अवक्तव्य एक साथ बता नहीं सकते, परंतु उसके साथ साथ विधि रूप धर्म को हम प्रधानता से बताएंगे, तो कार्य कथनचित सत्व अवक्तव्य उत्पन्न होता है, ये आगे वाला बता रहे हैं। इसी प्रकार नैगम नय का आश्रय करके स्थित शेष भंगों के भी अर्थ का कथन करना चाहिए। अन्य कौन कौन से भंग रह गए हैं, कथनचित असत अवक्तव्य और फिर कथनचित सत असत अवक्तव्य, तीनों का कॉम्बिनेशन। पहले हमने तीनों को अलग अलग लिया, जैसे सत असत अवक्तव्य, बराबर है, अभी दो दो का कॉम्बिनेशन, सत असत, सत अवक्तव्य असत अवक्तव्य, सत असत अवक्तव्य, ए बी सी ऐसा ले लेना, प्रत्येक को ए को अलग, बी को अलग, सी को अलग, एक एक करो, प्रत्येक भंग हो गए। दो दो भंग कैसे, ए बी, ए सी और बी सी, और तीनों को मिलकर ए बी सी, तीन बातें हैं, तो उसके भंग कितने हो गए, दो गुना दो गुना दो माइनस वन। हाँ, तो दो गुना दो आठ होते हैं, उसमें से एक कम करेंगे तो सात होते हैं, ये सप्तभंगी कहलाएगी। यहाँ पूर्वोक्त यानी सत्व असत एकांत पक्ष में दिए गए दोषों की भी संभावना नहीं है। पहले वो बहुत विस्तार से बताया कि सर्वथा सत मानने वाले के क्या दोष होते हैं और सर्वथा असत की उत्पत्ति मानने वाले में क्या दोष होते हैं, तो वो दोषों की यहाँ संभावना नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एकांत को विषय करने वाले दोषों की अनेकांत के विषय में संभावना नहीं है। अनेकांत में वस्तु में जो एट अ टाइम धर्म होते हैं उसकी अपेक्षा से स्यादवाद से बात करते हैं तो ये दोषों से रहित ऐसा उसका कथन होता है। शंका, अनेकांत किसे कहते हैं, उसका समाधान, जात्यंतर भाव को अनेकांत कहते हैं। अंत यानी धर्म, अनेक अंत, अन्य अन्य जाति के भाव है ना, वो भाव कहो, गुण कहो, धर्म कहो, शक्ति कहो, तो जहां जो अपेक्षा होगी, अन्य भाव वाले, जात्यंतर भाव वाले, भिन्न भिन्न अन्य जाति के, अभी हमने जात्यंतर पर चर्चा की ना, वो ना संयोग से आए हैं ना समवाय से आए हैं, वो एक साथ हुए वगैरह वगैरह, भिन्न भिन्न जाति के हैं। शंका, उत्पत्ति किसी दूसरे से नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा होने पर अनवस्था का प्रसंग आता है, अर्थात ये शंकाकार शंका पूछ रहा है, विवक्षित घटादि कार्यों की उत्पत्ति जिस किसी दूसरे से होती है वह भी अन्य किसी दूसरे से ही उत्पन्न होगा। क्या कहते हैं, कोई चीज अन्य से उत्पन्न होती मानेंगे तो वो अन्य चीज भी किसी अन्य चीज से उत्पन्न होगी और वो तीसरी वाली चीज भी किसी चौथी वाली चीज से उत्पन्न होगी। इस प्रकार उत्तरोत्तर कल्पना करने पर व्यवस्था नहीं बनेगी, इसलिए अनवस्था दोष संभव है। यदि कहा जाए कि कार्य किसी दूसरे से उत्पन्न न होकर स्वतः उत्पन्न होता है तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि असत पदार्थ के कारणता बन नहीं सकती, और चूंकि सब पदार्थों का सत्व देखने में आता है, यानी उनकी सत्ता है ऐसे देखने में आता है, इसीलिए समस्त पदार्थों के नित्य होने से कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। ये अभी ये इसका नया ही प्रश्न है कि कार्य हो ही नहीं सकता, कार्य की उत्पत्ति ही नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु तो हमेशा ही देखने में आती है। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि नित्य पदार्थ चूंकि प्रमाण गोचर नहीं है, अर्थात प्रत्यक्ष व अनुमान आदि किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, अतएव उसके अस्तित्व का विरोध है। नित्य पदार्थ है ने सर्वथा नित्य की बात चल रहे हैं, पदार्थ नित्य नहीं होता उसकी बात नहीं बता रहे, सर्वथा नित्य उसके कहने का क्या कहना है, तात्पर्य था शंकाकार का, कार्य हो ही नहीं सकता, कार्य हो ही नहीं सकता उसका अर्थ उसने क्या किया, सभी पदार्थ नित्य है उसमें पर्याय होती ही नहीं, ये उसका कथन था। तो यदि ऐसा मानेंगे तो ये प्रत्यक्ष दिखने में आता है, अभी तक घट नहीं था और अभी घट की उत्पत्ति हुई है, प्रत्यक्ष दिख रहा है ना कि नहीं था उसकी उत्पत्ति हुई है, उसने तो सर्वथा नित्य माना था, अवस्थाओं को भी वो यानी है ही नहीं ऐसा मानता था। देखो जैनी भी कभी कभी द्रव्य की बात करेंगे और पर्याय है ही नहीं, वो अपेक्षा से कहेंगे, वस्तु में पर्याय है ही नहीं ऐसा, समय सार वगैरह पढ़ेंगे तो उसी ऐसी बात आएगी, वस्तु में भेद है ही नहीं, क्योंकि हमको अभेद का लक्ष्य करना है, अभेद की दृष्टि में वो नहीं दिखाई देते, तो वहां भी वो स्यादवाद का कथन है। परंतु ये जीव जो मान रहा है, सांख्यमति की बात है ना, वस्तु को सर्वथा नित्य मानता है तो कार्य नहीं हो सकता, इसीलिए कहते हैं, फिर पढ़ती हूँ, नित्य पदार्थ चूंकि प्रमाण गोचर नहीं है, सर्वथा नित्य वस्तु प्रमाण में आती नहीं, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु ही नहीं आती, प्रमाण तो सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, या प्रत्यक्ष जो दिख रहा है अनुमान से जो जाने जाते हैं उसको भी प्रमाण कहा है, अर्थात प्रत्यक्ष व अनुमान आदि किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, यानी उसकी सिद्धि होती ही नहीं है, ना प्रत्यक्ष देखने में आता है और ना ही हम अनुमान से उसको जान सकते हैं। अतएव उसके अस्तित्व का विरोध है। नित्य पदार्थ है ना, यहाँ सर्वथा नित्य की बात चल रही हो, क्योंकि हम कहेंगे तो पदार्थ तो सभी नित्य ही होते हैं। ये मानने वाले की मान्यता में उसने सर्वथा नित्य माना है, इसलिए वहां नित्य पदार्थ नहीं होते, ऐसा कहा। नित्य अर्थ प्रमाण का विषय नहीं है, ऐसा जो नित्य पदार्थ है, सर्वथा नित्य पदार्थ, वो प्रमाण का विषय नहीं है, यानी ऐसी कोई प्रमाण से जानी नहीं जाती बात, क्योंकि उयोपत युगपत यानी एट ए टाइम अथवा क्रम से उसमें कर्म व कर्ता रूप पर्यायों का अभाव है। सर्वथा नित्य वस्तु होती ही नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसे वस्तु में पर्यायों का अभाव है। चले? और यदि उनका सद्भाव है तो फिर उसके अनित्य होने का प्रसंग आता है। अभी मानो उसको पर्याय है तो वो तो अनित्य होगी, यानी जो सर्वथा नित्य वस्तु कहने वाले की भ्रांति सिद्ध हो जाती है। इसके अतिरिक्त यानी अन्य भी क्या क्या मान्यता है, कार्य पर से ही उत्पन्न होता हो अथवा स्वतः ही उत्पन्न होता हो, यह बात भी नहीं है, सर्वथा की बात है। फिर भी सर्वथा पर से ही उत्पन्न होता है या सर्वथा स्वतः से ही उत्पन्न होता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का आश्रय करके उत्पन्न होने वाला कार्य पाया जाता है। ये कथनचित बात होती है, किसी नए से हम उस पर प्रधानता से कहते हैं, उसी समय अन्य भी बातें हमारे ख्याल में आती है। जैनीय आचार्य जब कथन करते हैं ना, तो वहाँ ऐसा भी कहते कहोगे कि पर्याय से उत्पन्न होती, द्रव्य से होती नहीं है, परंतु वो अपेक्षा है। अपेक्षा भूलकर सर्वथा वैसे मानेंगे तो जैनी होते हुए भी अन्य मत का प्रसंग आएगा। स्व से ही यानी सर्वथा होता है क्या, कि वहां द्रव्य है, अपेक्षाकृत है, वो भी बात अपेक्षाकृत है, वो षटकारक से अपने में से ही उत्पन्न होता है, ऐसा कहेंगे। फिर भी हम अन्य अपेक्षा से भी कहते ना कि स्वभाव है, वो द्रव्य से उत्पन्न होती है, पर्याय के द्रव्य से सर्वथा अलग है, द्रव्य है हिमालय में और पर्याय होते हुए विंध्याचल में, ऐसा हो रहा है। पर्याय वो द्रव्य की ही अवस्था है, तो ये हमारा बैलेंस नहीं कहीं खोना चाहिए। प्रधानता से किसी एक की अपेक्षा से बात करेंगे, उस समय दूसरी है ही नहीं भी कहेंगे, फिर भी जैनी आचार्य बात कर रहे हैं तो उसका अर्थ क्या होता है कि वो अपेक्षा से कथनचित की बात चल रही है। समय सार में तो कहेंगे राग जीव का है ही नहीं, पुद्गल का है, तो क्या सर्वथा पुद्गल का है? सर्वथा पुद्गल का है क्या राग? हाँ, वो तो अपेक्षाकृत उसका लक्ष्य छुड़ाने के लिए बताया है। तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है राग द्वेष किसकी है? जीव की है ना, तो जीव में होती है कि नहीं होती है? तो हम त्रिकाली की अपेक्षा कहेंगे, वो द्रव्य में है ही नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य छुड़ाना है, इसलिए
राग से भिन्न हूँ।
राग वो मैं किसमें है, वो मैं किसमें स्थापित किया उसने, जिसमें राग नहीं है, ऐसे त्रिकाली नित्य द्रव्य में मैं कहा उसने। मैं कहने के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। अभी शरीर रूप से भी हम मैं कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? मैं बीमार हूँ, तो समय दृष्टि क्या कहेगा? मेरा शरीर बीमार है, ऐसा कहेगा क्या? वो तो मेरा भी शब्द नहीं लगाना चाहिए फिर उसको, मेरा शरीर काहे का हुआ? तो मैं ऐसा, अभी अभी कोई ट्रक गाड़ी चला रहे आप, तो आपको कहेंगे अरे जरा बाजू हट, मुझे इतनी जगह काफ़ी नहीं, मुझे जरा ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए अंदर आने के लिए। तो अपने को क्या समझकर गाड़ी चला रहा है? गाड़ी का साइज समझकर चला रहा है ना, क्योंकि मुझे जाने में इतनी जगह काफ़ी नहीं, अभी और जगह लगेगी। तो गाड़ी के साथ अपने को मैं कह रहा है, बराबर है ना? फिर भी अपनी भिन्नता उसकी, हाँ मुझे निकल जाने दो, हाँ आप मेरे सामने क्यों आते हैं ऐसे है? ये कहते कि कहने की बात ऐसी होती है, तो मुझे जाने के लिए कितना रास्ता चलिए बरोबर निर्णय करने के लिए, वो तो गाड़ी रूपी अपने को वह मैं कह रहा है, वो कहने में है पर मान नहीं रहा वो, गाड़ी को आग लगी तो कूदेगा कि नहीं कूदेगा नीचे, तो उससे भिन्नता का उसके बहुत सभी प्रतीति चल रही है। देखो देखो सम्यक एकांत कहेंगे ना, जैसे समय दर्शन ज्ञान चारित्र जो उसकी एकता वही मोक्ष मार्ग है, वो सम्यक एकांत हुआ। समय एकांत हो गया ना अभी उसमें, सप्तभंगी ने उसमें तो सर्वथा बता दिया सम्यक, अपेक्षा पकड़कर हाँ अपेक्षा कह दी तो सर्वथा कहते हैं। जैसे अभी उसको भूल जाओ, समय के एकांत में ऐसा आ गया, हम कह सकते हैं कि वस्तु नित्य है, किसी अपेक्षा नित्य कहेंगे, यानी किसी अपेक्षा वस्तु नित्य भी है, किसी अपेक्षा अनित्य भी है, किसी अपेक्षा कह दिया तो हम भी लगा सकते हैं। अब हमने अपेक्षा बता दी कि द्रव्य की अपेक्षा वस्तु नित्य ही है, अभी भी नहीं लगाया, अभी ही लगाया, क्योंकि हमने अपेक्षा कौन सी है वो बता दी, तो हम ही लगाएंगे तो ये सम्यक एकांत हो जाएगा। अपेक्षा बता देते हैं हम वहां पर, सत्य है ना वो बात, तो यहाँ ये अभी हमने पढ़ा कार्य पर से ही उत्पन्न होता हो ऐसी बात नहीं है, यानी सर्वथा पर से ही उत्पन्न होता है या सर्वथा स्व से उत्पन्न होता है, ये सर्वथा वाले जो एकांत मत है उसका यहाँ निषेध हो रहा है। नीचे से चौथी लाइन उसी पैराग्राफ की, दूसरे प्रमाण के प्रतिकूल होने से जिनकी अप्रमाणता ज्ञात हो चुकी है ऐसे विकल्पाभासों के द्वारा, विकल्पाभास कौन से, ये तो सही विकल्प नहीं है, विकल्पा के आभास है, भ्रमणा चल रही है, कौन से परता उत्पन्न है या स्वतः उत्पन्न है इत्यादि। परतः यानी परसे, स्वतः यानी स्व से, संस्कृत में तह शब्द लगता है उसमें, क्या कहते हैं, प्रमाण के प्रतिकूल होने से यानी सामने हमें प्रत्यक्ष हम जान रहे उसके प्रतिकूल वो बता रहे हैं, और जो अनुमान से भी गलत सिद्ध होता है उससे भी वो प्रतिकूल है, इसलिए ऐसे जो विकल्पाभास है उसके द्वारा प्रमाण से विषय किया गया पदार्थ अन्यथा करने के लिए शक्य नहीं है। क्या कहते हैं, जो पदार्थ प्रमाण का विषय है, प्रमाण का विषय है, ज्ञान का विषय है, जाना जाता है, समय ज्ञान का विषय है, उसको पदार्थ को तो अन्यथा नहीं कर सकते, पदार्थ अन्यथा हो नहीं सकता, भले विकल्पाभासों वाले वो उसको अन्यथा मान लेवे तो क्या हुआ, वस्तु का स्वरूप बदल जाएगा कि नहीं जाएगा, उनके लिए तो बदलेगा कि नहीं, बौद्धों के लिए तो वस्तु क्षणिक हो जाएगी नहीं, भले जैनियों के लिए नहीं होगी तो क्या होगा, आप क्या कहते हैं, बौद्धों की वस्तु क्षणिक होती है और जैन की वस्तु यानी नित्यानित्य होती है, ऐसा है क्या, वस्तु वस्तु स्वरूप, हाँ हाँ वही तो, वस्तु का स्वरूप बिगड़ नहीं जाता है, हाँ तो प्रमाण से उसको जानी जाती है, और ये अप्रमाण वाले तो उसको अन्यथा अन्यथा गलत रूप से प्रस्तुत करते हैं, स्वयं जानने में भी उनकी गलती चलती है, जैसे हम कोई देख रहे किसी वस्तु की तरफ, बीच में आड़ा टेढ़ा वो गोल या ऐसा कोई कांच लाया बीच में ग्लास, तो वस्तु टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, तो वस्तु टेढ़ी मेढ़ी हो गई क्या, वस्तु तो है वैसी है, उनको वैसी क्यों दिख रही है, तो गलत नजर से गलत अंदाज से देख रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से अव्यवस्था का प्रसंग आता है, वस्तु ही ऐसी गलत हो जावे तो अव्यवस्था हो जाएगी सब, वस्तु तो वस्तु रूप उसका स्वरूप जो है, वस्तु की व्यवस्था जो है, उसका जो नेचर है वो तो है वैसा ही कायम रहता है। शंका, वस्तु का विनाश पर के निमित्त से नहीं होता है, क्योंकि प्रसज्ज और पर्युदास रूप अभावों का दूसरों से उत्पन्न होने का विरोध है, इसीलिए विनाश निर्हेतुक है, कहा भी है भाष्य में, क्या कहते हैं, प्रसज्जा भाव और पर्युदास, ये अभावों की बात की है, यानी प्राग भाव और प्रध्वंसा का भाव को यहाँ प्रसज्जा भाव और पर्युदास भाव कहा है। ये विनाश के बारे में कहा है, एक्चुअली वस्तु का विनाश पर के निमित्त है, क्योंकि प्रसज्ज और पर्युदास का अभाव, देखो हम पढ़ेंगे ज्यादा ख्याल में आएगा, ये उसके लिए वो ये शंकाकार की शंका ही चल रही हो, नहीं तो हम उसी को अंडरलाइन करेंगे। हाँ, कभी कभी क्या शंकाकार भी जो सच्ची बात है वो कहकर फिर अपनी अलग से शंका प्रस्तुत करता है। हाँ, तो कहाँ अंडरलाइन करना यह हमें बराबर पता होना चाहिए। हाँ हाँ, उसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। हाँ ठीक है, वो शंकाकार, वो क्यों हमारे भी मन में वो शंका हो सकती है, ऐसा कभी कभी पूछता है ना, इसका अर्थ क्या है, तो हम उसको भी अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि उसका समाधान नीचे मिलता है हमको, हम ऊपर का श्लोक पहले पढ़ेंगे। जातिरेव हि भावानां निरोधे हेतुरिष्यते यो जातश्च न च ध्वस्तो नश्येत् पश्चात् स केनव। पदार्थों के विनाश में जाति यानी उत्पत्ति को ही कारण माना जाता है, परंतु जो उत्पन्न होकर भी नष्ट नहीं होता है वह फिर पीछे आपके यहाँ किसके द्वारा नाश को प्राप्त होगा, नहीं हो सकेगा। क्या कहते हैं, जो उत्पन्न हुआ है ना वो नाश हो जाता है उसका, और ये कोई अगर नाश को मानता ही नहीं है, प्रध्वंसा भाव को मानता ही नहीं है, तो क्या कहेंगे, वो किसके द्वारा नाश को प्राप्त होगा, उसका नाश ही नहीं होगा, तो जो उत्पन्न हुआ है वो अनंत काल तक रहने का प्रसंग आएगा। जैसे हम प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव में क्या देखे थे, प्रध्वंसा भाव में क्या होता है, हाँ अभी वर्तमान में है, वो आगे के समय में नहीं है, यानी उसका विनाश हो जाता है। नहीं होगा मोक्ष, जो रोगी है वो रोगी ही रहेगा। अच्छा। हाँ, निर्धन निर्धन ही रहेगा, तो फिर जल्दी समझ में आएगा। चूंकि वो अपने पर्याय नहीं है, वो तो संयोग की बात है। हा? दूसरे क्षणक्षयी कारण से कार्य उत्पन्न भी नहीं हो सकता है। क्या कहते हैं, क्षणक्षयी, क्षण में क्षय होने वाले कारण होंगे तो उससे कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उत्पन्न अथवा उत्पद्यमान कारणों से कार्य की उत्पत्ति का विरोध है, इस कारण कार्य उत्पन्न नहीं होता। यानी यहाँ तक तो ठीक बताया था, परंतु आगे चलकर गाड़ी जो जो हमने अभी देखा था, एक समय वाला है, उत्पन्न होता हुआ उसको विषय का उत्पन्न करता है, 22 पेज पर ये हमने बहुत चार उसके विकल्प देखे थे, वो कैसा उत्पन्न करता है उसका निराकरण किया था ना, उसी की बात यहाँ फिर उसने दोबारा ली, उसका फिर दोबारा क्या कहना, कार्य उत्पत्ति ही नहीं होती कार्य के। समाधान, ऐसा जो बौद्ध का कहना है वह भी ठीक नहीं है। ये कहना उसका कैसा है, बौद्ध का कहना, क्योंकि उसने क्षणक्षयी वाला बताया ना, क्षणक्षयी कार्य, क्योंकि उत्पत्ति के बिना क्षणक्षयित्व का विरोध है। क्या कहते हैं, वो वस्तु उत्पत्ति नहीं होती वह क्षण स्थाई है, तो उत्पत्ति हुए बिना वो क्षण भर कैसे रही, क्षण के लिए तो उसकी उत्पत्ति है कि नहीं है। पदार्थ उत्पन्न हुए बिना नष्ट नहीं हो सकता, ये प्रसज्ज का अभाव, क्योंकि वैसा स्वीकार करने पर गधे के सिंह के भी विनाश का प्रसंग आता है। क्या कहना, जो है नहीं उसके विनाश होगा, गधे का सिंह होता है ना, तो उसका विनाश मानना पड़ेगा, तो विनाश होने के लिए पहले उगने तो चाहिए उसके सिंह, हमको गधे के सिंह काटना चाहिए, कितना लंबा होने पर काटेंगे? 2 इंच के, 4 इंच के, 10 इंच? हाँ, वो है ही नहीं ना, तो क्या काटेंगे उसको? वैसे उत्पत्ति नहीं होती और वह क्षणस्थाई है कहते हैं। दूसरे, क्षणक्षयी वस्तु का अस्तित्व ही संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर प्रमाण और प्रमेय दोनों के अभाव का प्रसंग आता है, कहा भी है। ये तो जानने वाला भी और वो वस्तु भी दोनों क्षण क्षयी, एक क्षण भर के लिए है ना, तो कौन जानेगा? और मैंने ये वस्तु जानी ऐसा कौन कहेगा? आप जो कथन करने जाओ तो पूरा वाक्य भी कैसा होगा? एक शब्द एक अक्षर उच्चारने के लिए असंख्यात समय चले जाएंगे, और आप तो एक समय में नष्ट हो जाते हैं, तो आगे की वस्तु उत्पन्न कैसी होगी? और हमने ये वाक्य बोला, ये कह कह सकते हैं? तो बौद्ध मती जो अन्य से बहस करेंगे तो उसने प्रश्न किया, इसने उत्तर दिया, ये भी बात कैसे बनेगी? क्योंकि हर समय जीव भी नया उत्पन्न हो रहा है वहां पर। जिसने गुनाह किया वो अलग था कोई, और अभी अपराध कोई भोगने वाला अलग हो गया। हाँ, तो उसने बिना गुनाह किए अपराध भोग रहा है, ऐसा ये सजा भोग रहा है उसकी। इसलिए वो 7 नंबर की गाथा कहते हैं, क्षणिके कांत पक्षेपि प्रेत्यभावाद्य संभव प्रत्यभिज्ञानादि अभावान्न कार्यारंभ कुतः फलम्। क्षणिक एकांत पक्ष में भी, ये क्षणिक एकांत पक्ष है, यानी सर्वथा क्षणिक मानने वाला पक्ष, उसको क्षणिक एकांत पक्ष कहा। प्रत्यभिज्ञान आदि का अभाव होने से क्या कहते हैं? प्रत्यभिज्ञान किसको कहते हैं मालूम है आपको? हाँ, जोड़ रूप ज्ञान, जोड़ रूप ज्ञान। ऐसे सामने कोई चीज देख रहे हैं, या आपने पेन देखी तो आपको ख्याल में, मेरी भी ऐसी पेन थी जो मैंने घर पर रखी है, तो आपको याद स्मृति हुई ना, पहले किसी की स्मृति हुई, और पर सभी क्षणस्थाई है, और वो स्मृति करने वाला भी कहाँ, ये अभी तो नया है, उसको स्मृति कैसे हो सकती है? वो तो अभी अभी क्षण भर के तो पहले मैंने ये जाना था, ऐसे कौन कह सकता है? जो पहले भी था और जो अभी भी है, हम कहते ना बचपन में मैं बहुत शरारती था, ऐसे कोई कहता है, अरे पन तू तो अभी क्षण भर के लिए है ना, तेरा बचपन कहाँ से आया? ख्याल में आता है उसकी क्या भूल हो रही है? तो प्रत्यभिज्ञान का तो अभाव ही हो जाएगा, होने से कार्य का आरंभ नहीं हो सकता, और जब कार्य का आरंभ नहीं हो सकता है तब उसके अभाव में भला पुण्य एवं पाप रूप फल की संभावना कहाँ से की जा सकती है? कार्य ही नहीं होता तो किसी को पुण्य का फल मिला, पाप का फल, अरे वो पुण्य खेरेगा बांधेगा फिर उसका फल मिलेगा, ये तो बातें हो ही नहीं सकती। जब अभी मैंने बात की ना, किसी ने अपराध किया और उसका उसको फल भुगतना पड़े, सजा हो गई, दंड हो गया, तो सिद्ध ही नहीं होगा। तथा पुण्य व पाप का अभाव होने पर जन्मांतर रूप प्रेत्यभाव, ये अन्य जन्म धारण करना, उसको प्रेत्यभाव कहा, कल शब्द आया था ना, हाँ, एवं बंध मोक्षादि का भी सद्भाव नहीं रह सकता। विशेषार्थ, इसी बात को फिर दोबारा समझा रहे हैं, सब पदार्थ क्षण क्षयी है, क्षण में क्षय होने वाले है, ऐसा एकांत स्वीकार करने पर स्मृति व प्रत्यभिज्ञान आदि की संभावना नहीं की जा सकती। स्मृति यानी मेमोरी, पूर्व का स्मरण, और प्रत्यभिज्ञान यानी पहले के स्मरण करके सामने वाली चीज के साथ उसका मिलान करना, कि हमारी वस्तु इससे थोड़ी अलग थी। जैसे काली गाय देखी तो उसके जो कुछ आकार है, सिंह है, अरे हमारे घर में पहले सफ़ेद गाय थी, ऐसी वो ये काली वो सफ़ेद थी, वो भी उसको विसदृश रूप से वो प्रत्यभिज्ञान कहेंगे उसको। देखो संभावना नहीं, क्योंकि कारण कि स्मृति पूर्व में अनुभव किए गए पदार्थ के विषय में ही होती है। स्मृति किसको कहेंगे? जो पहले कुछ ज्ञान में आया है, परंतु जिसका वर्तमान में अनुभव किया गया है वह तो उसी क्षण में उत्पन्न होने के साथ ही नष्ट हो चुका। क्षण क्षय का ना, उत्पन्न हो, एक समय में उत्पन्न भी हुआ और नाश भी हुआ। इस प्रकार विषय का अभाव होने से स्मरण ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। स्मृति कहो या स्मरण कहो, स्मरण के अभाव में प्रत्यय भी ज्ञान का भी असंभव है। आगे आगे के जो ज्ञान होते हैं ना तो एक दूसरे पर होते हैं, इसलिए स्मृति को पहले कहते फिर प्रत्यय भी ज्ञान को कहते। स्मृति के बिना हम प्रत्यय भी ज्ञान कैसे सिद्ध करेंगे? स्मृति के द्वारा हम पूर्व में देखा जाना हुआ पदार्थ को याद करते हैं और उसको वर्तमान में जो जान रहे उसके साथ उसका जो जोड़ रूप मिलान रूप ज्ञान करते हैं। तो प्रत्यय भी ज्ञान भी संभव नहीं है, स्मृति संभव नहीं है, क्योंकि क्षण क्षयी माना उसने अपने को भी और पर को भी, सबको क्षणिक मानते हैं। द्रव्य है ही नहीं, ऐसा क्षणिक, सब कुछ क्षणिक ही है ऐसे मानते हैं। देखो प्रत्यय विज्ञान असंभव, क्योंकि प्रत्यक्ष व स्मरण के निमित्त से यह वही देवदत्त है, गाय के सदृश गवय होता है। इस प्रकार जो एकत्व व सादृश्य आदि विषय ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यय विज्ञान कहा जाता है। देखो यहाँ प्रत्यय विज्ञान किसको कहा, पहले में पहले एकत्व, यह वही देवदत्त है। हमने किसी लड़के को देखा था 5 साल पहले, अभी वो बड़ा हो गया ना, बढ़ते ना वो, तो उसकी बढ़ने की उम्र में 5 साल का बाद उसके बाद देखा, हम क्या कहेंगे, यह वही देवदत्त है। तो वही देवदत्त है वो, उसका वही है ना, एकत्व बताया। और फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या, गाय के सदृश गवय होता है, गवय नाम का प्राणी है, उसको जंगल में देखा तो उसको देखकर क्या, ये गाय के सदृश है ऐसा जाना। तो पहले गाय को जाना था और उसके साथ सादृश्य बता रहे, यह वही देवदत्त कहा था उसमें एकत्व बताया था, और ये गाय के समान है उसमें सादृश्य बताया, समानता बताई, सिमिलैरिटी बताई। इस प्रकार जो एकत्व व सादृश्य आदि विषय ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यभिज्ञान कहा जाता है। पदार्थ के सर्वथा क्षणिक होने पर पूर्वोत्तर अवस्थाओं में रहने वाले, क्या कहते हैं, पूर्व और उत्तर अवस्था, एकत्व किसको कहेंगे, यह वही है जो 5 साल पहले देवदत्त था, वही यह है। पूर्व और उत्तर अवस्था में एकत्व कब बनेगा, जब वो वस्तु रूप से रहेगा, तो भले अवस्था बदली है, उसने तो सर्वथा क्षणिक मान लिया है, तो देवदत्त तो हर क्षण मर रहा है, हर समय नया नया है, क्षण भर रहता है, तो हम यह वही है कह नहीं सकते। इसलिए कहते हैं एकत्व आदि धर्मों के असंभव होने से उक्त लक्षण वाले प्रत्यभिज्ञान की भी संभावना नहीं की जा सकती। इस प्रकार स्मरण वो प्रत्यभिज्ञान आदि के साथ ही अन्य भी वो सिद्ध नहीं होगे ज्ञान, पूर्वोत्तर अवस्थाओं में अवस्थित एक प्रमाता आत्मा के भी न रह सकने से, क्या कहते हैं, वो सामने वाला देवदत्त भी घटित नहीं कर सकते, गाय पर भी घटित नहीं करते, गवे पर, तो प्रमाता यानी ज्ञाता, जानने वाला, प्रमाता आत्मा लिखा ना, हम प्रमेय में यानी क्या देखते हैं, ज्ञेय, प्रमाण यानी ज्ञान और प्रमाता यानी ज्ञाता यानी जानने वाला, ज्ञाता, ज्ञाता आत्मा, आत्मा कैसा है, जानने वाला आत्मा है। तो हमारी भी पहली अवस्था और अभी की अवस्था जानने वाले की भी होगी कि नहीं होगी, तो आत्मा भी नहीं रहेगा, सबको क्षणिक माना है, तो जीव भी क्षणिक हो गया, तो ये जानने वाला भी जो पूर्व में जानने वाला अभी जानने वाला अलग अलग, तो स्मृति व प्रतिभान कैसे होगी, क्योंकि अभी जीव भी नया है ना जानने वाला, उसको एक समय पहले का कुछ भी जाना हुआ कुछ भी नहीं है उसके पास, भूल की बात बताए, अभी वो बोल रहे ना उतने में कितने समय गए। एक वाक्य पढ़ते देखो, इसलिए कार्य का आरंभ नहीं हो सकता, कार्य के अभाव में उसके फलस्वरूप पुण्य पाप एवं बंध मोक्ष आदि भी नहीं बन सकते, अतएव क्षणिक एकांत पक्ष ग्राह्य नहीं है। आगे की चर्चा कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो